दिन भर 11 अक्टूबर गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। क्विंट मीडिया के दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे, विपक्ष का सरकार पर आरोप।
वो रेड करेंगे, हरास करेंगे, अटैक करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे।
रफाल पर कांग्रेस फिर हमलावर, रक्षा मंत्री के फ्रांस दौरे की टाइमिंग पर उठाए सवाल।
ताजुब की बात ये है कि वो जो दासों कंपनी है उसके हेडक्वार्टर्स में जाने वाली है, ये बड़ी अनयूजुअल स्टेप है।
और गंगा सफाई को लेकर 111 दिनों से अनशन पर बैठे जीडी अग्रवाल नहीं रहे।
वो कहते थे कि जन जो भी कमेटी बने गंगा को लेकर उसमें जन सहभागिता हो, परंतु केंद्र सरकार और उनके बीच इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी।
आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। जाने माने पत्रकार राघव बहल के दफ्तर और घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बहल न्यूज पोर्टल क्विंट के मालिक हैं और टीवी 18 नेटवर्क के संस्थापक हैं। क्विंट ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी नोएडा में मौजूद क्विंट मीडिया के दफ्तर, क्विंट के एडिटर इन चीफ राघव बहल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु कपूर के घर, क्विंट टाइप के दफ्तर पर छापा मार रहे हैं और बंगलुरु में मौजूद द न्यूज मिनट के दफ्तर पर भी सर्वे किया गया है। रूसी सोयूज रॉकेट के टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद आपात लैंडिंग करने वाले चालक दल के दोनों सदस्यों की हालत बेहतर है। रूसी कॉस्मोनॉट एलेक्सी आफ्शिनिन और उनके अमरीकी सहयोगी निक हेक की हंसते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से वापस कजाकिस्तान के बायकोनूर अंतरिक्ष केंद्र लाया गया है, जहां से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद उनके यान के रॉकेट बूस्टर में समस्या आ गई थी। नासा टीवी पर इस उड़ान को लाइव प्रसारित किया जा रहा था। जब गड़बड़ी हुई तो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। यात्री बता रहे हैं कि बूस्टर नाकाम हो गया है और उनके सामने आपात स्थिति है। इस घटना के बाद रूस ने अंतरिक्ष केंद्र के लिए मानव अभियानों को रोक दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। कुछ सालों से अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए सिर्फ रूसी यानों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि पाकिस्तान ने अपना वित्तीय संकट टालने के लिए कर्ज मांगा है। आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड के मुताबिक पाकिस्तानी वित्त मंत्री असद उमर ने उनसे मुलाकात के दौरान कर्ज की गुजारिश की है। हाल के दिनों में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसका कुल विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $8 अरब रह गया है, जिससे वो अपना बाहरी कर्ज भी चुकाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ से $8 अरब का ही कर्ज मांगा है। वैश्विक व्यापार में तनाव और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाओं के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट जारी है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में यूरोप के प्रमुख सूचकांक में 1.5% तक की गिरावट देखी गई। बुधवार को भी इतनी ही गिरावट दर्ज हुई थी। एशिया के बाजारों में भी शेयर तेजी से गिरे। चीन में बाजार बीते 4 साल के न्यूनतम स्तर पर हैं। जापान और हांगकांग में बाजार में 4% तक की गिरावट देखी गई है। ब्रितानी राजकुमार विलियम्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है कि यदि जानवरों से जुड़े अवैध व्यापार को नहीं रोका गया तो कई नस्लें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर सकेंगी। प्रिंस विलियम्स ने कहा कि हाल ही में वो अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ गेंडों की सुरक्षा उनसे भी ज्यादा थी, क्योंकि उन पर खतरा ज्यादा था। प्रिंस विलियम्स ने कहा,
"It is heartbreaking to think that by the time my children are in their 20s,
ये हृदय विदारक है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तब हाथी, गेंडे और बाघ जैसे जानवर विलुप्त हो चुके होंगे। मैं शायद अपने बच्चों की आंखों में देखकर ये न कह पाऊं कि हमारी पीढ़ी ये सब होते हुए देखती रही। तंजानिया की पुलिस के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी दार सलाम से एक युवा अरबपति कारोबारी को अगवा कर लिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक मोहम्मद देवजी को एक लग्जरी होटल के बाहर से 4 लोगों ने अगवा किया। वो अफ्रीका के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आयकर विभाग ने आज समाचार वेबसाइट द क्विंट के दफ्तर में छापा मारा। इस मीडिया संस्थान के संपादक राघव बहल का कहना है कि अधिकारियों की ओर से सर्वे के नाम पर उनके दफ्तर में छापा मारा गया और उन्होंने अधिकारियों से फोन पर कहा कि पत्रकारिता से जुड़ी किसी सामग्री को वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे सरकार की मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है। रिपोर्ट सुनिए सुशीला सिंह से।
न्यूज पोर्टल क्विंट के मालिक और टीवी 18 नेटवर्क के संस्थापक और जाने माने पत्रकार एंकर राघव बहल के नोएडा स्थित कार्यालय और उनके घर पर आज सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची और तलाशी ली। क्विंट से जारी एक बयान के मुताबिक विभाग क्विंट के दफ्तर राघव बहल और सीईओ रितु कपूर के घर बेंगलुरु में मौजूद द न्यूज मिंट के दफ्तर में सर्वे कर रहा है। राघव बहल ने चिंता जताते हुए एडिटर्स गिल्ड को एक बयान भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि ये छापा तब डाला गया जब वो दिल्ली से बाहर मुंबई में थे। उन्होंने अपने बयान में कहा,
मैंने अपने दफ्तर में मौजूद एक अफसर मिस्टर यादव से बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि वो किसी भी अन्य दस्तावेज को न देखें या उठाएं, क्योंकि उनमें बहुत गंभीर संवेदनशील पत्रकारिता सामग्री हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि एडिटर्स गिल्ड इस मसले पर हमारा सपोर्ट करेगी और इस तरह के किसी भी मामले के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी जो भविष्य में किसी भी अन्य पत्रकारिता संस्थान पर हो सकती है। उन्हें पत्रकारिता सामग्री की अनाधिकृत कॉपी लेने के लिए अपने स्मार्टफोन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं मुंबई से दिल्ली लौट रहा हूँ।
कई सीनियर पत्रकारों जैसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पूर्व संपादक शेखर गुप्ता ने इस छापे को धमकी बताया है। वहीं एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि हालांकि टैक्स अधिकारियों को ये हक है कि वो इससे संबंधित नियमों के पालन को लेकर पूछताछ कर सकते हैं, इन अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाना चाहिए कि ये लगे कि ये सरकार के आलोचकों को धमकाने की कोशिश का हिस्सा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा,
देखिए वो रेड करेंगे, हरास करेंगे, अटैक करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। यू आर प्रेस पीपल, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज प्रेशर ऑन यू।
कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बयान एक सवाल के जवाब में दिया था। वहीं सरकार की तरफ से जब यही सवाल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से किया गया तो उनका कहना था कि उनकी सरकार प्रेस की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखती है, लेकिन अगर कोई मीडिया समूह भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसे जवाब देना होगा। राघव बहल मीडिया में जाना माना नाम है जिन्होंने टीवी समूह टीवी 18 और क्विंट की स्थापना की।
सुशीला सिंह से रिपोर्ट सुन रहे थे आप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल डील को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि रफाल पर नए दावे से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा। दरअसल ताजा घटनाक्रम में फ्रांस की खोजी वेबसाइट मीडिया पार्ट में छपे एक लेख के हवाले से कहा गया है कि दासो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही रिलायंस को रफाल डील में शामिल किया गया था। इस लेख के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए।
डेसॉल्ट कंपनी के नंबर दो एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव कॉम्पनसेशन। शब्द देखिए, इनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कॉम्पनसेशन। व्हाट इज मिस्टर अनिल अंबानी डन, व्हाट इज ही बीइंग कॉम्पनसेटेड फॉर, दैट्स द क्वेश्चन। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और जब हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लोकसभा में चर्चा की, डिस्कशन किया, डिबेट किया, आंख में आंख मिलाई, तो प्रधानमंत्री आपकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहे थे।
राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के फ्रांस दौरे पर भी सवाल उठाए हैं, सुनिए।
प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई है, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डेसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है।
इस पर जवाब देने के लिए भाजपा की ओर से संबित पात्रा मीडिया के सामने आए और पलटवार करते हुए गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने रफाल डील को गेम चेंजर बताया है, तो ऐसे में जनता उनकी बात का विश्वास करेगी या राहुल गांधी की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के फ्रांस दौरे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा।
इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद एक वक्तव्य जारी किया है, पूर्व निर्धारित सब कुछ राहुल गांधी जी से पूछ के कौन कहां, राहुल गांधी इटली चले जाते हैं प्राइवेट जेट में, छुट्टी मनाते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं, वो पूछ के जाते हैं। जब मंत्रालय मंत्री, ये सरकार है इंडिया की, अगर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किसी देश में कोई भी मंत्री जा रहा है तो क्या नहीं जाए? देखिए, वी हैव टू कीप असाइड द पेटी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द कंट्री।
इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की फ्रांस में मौजूद पत्रकार वैजू नरावने से और उनसे पूछा कि उनके पास इस बारे में क्या जानकारी।
डिफेंस मिनिस्ट्री है यहाँ की, वो थोड़ा डाउन प्ले कर रहा है इस यात्रा को, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रेसिडेंट है नहीं, वो गए हुए हैं बाहर, वो इस वक्त अफ्रीका में है मिस्टर मैक्रों, उनके साथ कई जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो भी गए हुए हैं, और इसलिए निर्मला सीतारामन का इस वक्त यहाँ पर आना थोड़ा ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी बाजी करके उनका लास्ट मिनट पर प्रोग्राम बुक किया हुआ है, क्योंकि ये शेड्यूल ट्रिप नहीं थी। हमें डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों से ये पता चल रहा है कि उनका इस वक्त नॉर्मली मिनिस्टर के जो ट्रिप्स होते हैं वो कई हफ्तों से पहले अरेंज किए जाते हैं, वैसा कुछ नहीं था, वो एकदम से यहाँ पर आ रही है। एक और ताजुब की बात ये है कि वो जो दासो कंपनी है उसके हेडक्वार्टर्स में जाने वाली है, ये भी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि जब आप किसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो, वो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे अंबानीज हैं और दासो के बीच में है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मिनिस्टर को कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाने की जरूरत क्या है? ये बड़ी अनयूजुअल स्टेप है
जी। अगर निर्मला सीतारमण के कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ और जानकारियां मिल पाई हैं, वहाँ किससे किससे उनकी मुलाकात होनी है, क्या रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है या होनी है?
डिफेंस मिनिस्टर के साथ कह रहे हैं लोग कि उनकी मुलाकात ऑर्गेनाइज की जा रही है, लेकिन उनके ऊपर हमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स अब तक मिले नहीं है, तो होने वाला है लेकिन कब होगा कैसे होगा वो नहीं मालूम। ये तो बहुत ही छोटी ट्रिप, आने जाने की ट्रिप है, ये कोई बड़ी ट्रिप नहीं है, एक दिन की वर्किंग ट्रिप है, शायद दूसरे दिन भी वो यहाँ रहे, लेकिन 36 घंटों से ज्यादा ये यहाँ फ्रांस में नहीं होंगी।
रक्षा मंत्री की फ्रांस यात्रा पर जानकारी दे रही थी पेरिस में मौजूद पत्रकार वैजू नरावने। आगे बढ़ते हैं। गंगा को प्रदूषण से बचाने को लेकर 111 दिनों से अनशन कर रहे पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल का आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में निधन हो गया। 86 साल के अग्रवाल 22 जून से अनशन पर थे। गंगा सफाई के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके थे। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले स्थानीय पत्रकार सुनील दत्त पांडे से बात की।
उन्हें कल हरिद्वार जिले के जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अनशन स्थल हरिद्वार से उठाकर ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती किया था। प्रोफेसर अग्रवाल ने मंगलवार की दोपहर बाद जल पीना भी छोड़ दिया था। उन्होंने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि यदि उनकी 9 अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी गई तो वे जल त्याग देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं गंगा जी को मरते नहीं देखना चाहता हूं और गंगा जी को मरते देखने से पहले मैं अपने प्राणों को छोड़ देना चाहता हूं। उनको मनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हरिद्वार के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी आए थे, परंतु केंद्र सरकार से जो प्रस्ताव उनके लिए साथ आया था वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उनकी यह मांग थी कि गंगा का जो कानून है वो उनके शर्तों के हिसाब से बनाया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार को एक मसौदा भी इस संबंध में भेजा था। वे 22 जून से मां सदन में अनशन पर बैठे हुए थे। इस बीच उनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री उमा भारती आई, परंतु उमा भारती से भी उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि उमा भारती सरकारी गंगा कानून एक्ट बनाना चाहती थी और उनकी बातों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके निधन से जो संत समाज है और पर्यावरणविद है उनमें अशोक की लहर दौड़ गई है। और जब वो यहाँ पर एम्स में दो बार अगस्त और जुलाई के महीने में भर्ती हुए थे तब डॉक्टर ने बताया कि हमने उनको सलाह दी थी कि उनकी एंजियोग्राफी की जाए, परंतु उन्होंने एंजियोग्राफी करने से मना कर दिया था।
जी हम ये चाहते हैं कि थोड़ा आप जीडी अग्रवाल के बारे में हमारे श्रोताओं को और बताएं। गंगा सफाई के मसले पे वो कब से सक्रिय थे, उससे पहले वो क्या किया करते थे?
प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो थे कानपुर आईआईटी में प्रोफेसर थे और वो अभी 5 साल पहले भी उन्होंने मात सदन हरिद्वार में ही आमरण अनशन किया था और तब उनके अनशन के कारण, उनके आंदोलन के कारण तब की केंद्र सरकार ने उत्तरकाशी में बन रही 3 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम बंद कर दिया था और तब उनको मनाने के लिए तब के केंद्रीय मंत्री रमेश जयराम आए थे और सरकार ने उनकी बात मान ली थी, परंतु इस बार जब वो अनशन पर बैठे तो उनकी केंद्र सरकार से पटरी नहीं बैठ पाई। केंद्र सरकार ने अपनी शर्तें उन पे बनाना चाहती थी परंतु वो केंद्र सरकार की बातों को नहीं मानना चाहते
थे। वही थोड़ा हम ये भी समझना चाहते हैं कि ये पहली सरकार है जिसने गंगा सफाई मंत्रालय अलग से बनाया, तो एक तरह से उन्हें तो उम्मीदों की सरकार उनके लिए रही होगी चूंकि वो इसी मिशन से लगे हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार से नहीं बनी?
ये कहना था कि वर्तमान सरकार जो है जो गंगा कानून बनाना चाहती है और जो अथॉरिटीज बनाना चाहती है उन पर सरकारी अधिकारियों का आधिपत्य जाते रहता है, तो वो कहते थे कि सरकारी अधिकारियों के बूते जो है गंगा साफ नहीं की जा सकती और न ही गंगा की दशा को सरकार के सरकारी अधिकारियों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। वो कहते थे कि जन जो भी कमेटी बने गंगा को लेकर उसमें जन सहभागिता हो, परंतु कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और उनके बीच इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार भी उनके मामलों पर कोई खास गंभीर नहीं आई।
ऋषिकेश से जानकारी दे रहे थे सुनील दत्त पांडे। हरियाणा के सतलोक आश्रम के विवादित संत रामपाल को अदालत ने हत्या के 2 मामलों में दोषी करार दिया है। इन मामलों पर उन्हें 16 और 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। मामला 2014 का है जब रामपाल के आश्रम में भड़की हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी गुरप्रीत कौर ने बात की हिसार में मौजूद स्थानीय पत्रकार शशिकांता से।
दरअसल 429 और 430 नंबर जो केस थे रामपाल के, उस 429 और 430 नंबर दोनों केसों में हत्या को लेकर केस थे। 4 महिलाओं का केस था एक तो, और दूसरा केस अलग से एक महिला का था। तो इन दोनों केसों में रामपाल को दोषी करार दे दिया गया है बकायदा। और इसके अलावा जो आने वाली जो 16 और 17 तारीख है, 16 को 429 नंबर केस और 430 नंबर केस की 17 को उस पे सजा होगी।
16 और 17 जिस दिन सजा का ऐलान किया जाना है उस दिन सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? राम रहीम केस के दौरान हुई हिंसा के बाद क्या पुलिस ज्यादा चौकन्नी नजर आएगी?
निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि क्योंकि राम रहीम मामले में पुलिस ने बहुत ज्यादा इनकी किरकिरी हुई थी और बहुत से लोग उसमें मारे गए थे, ऐसे में पुलिस ने पूरे चाक चौबंद प्रबंध किए हुए हैं और बकायदा 2000 के आसपास पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। कई टुकड़ियां जो बाहर से बुलाई गई है और CRPF की टुकड़ियां भी बुलाई गई है जो अब महज दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त कई DIG लेवल के अधिकारी DGP खुद डेरा डाले हुए हैं, मतलब पुलिस का चारों तरफ नाकेबंदी की गई है। करीबन 15 से 20 के आसपास नाके भी लगाए गए हैं। तो इस वक्त जब दोषी करार दिया गया तब इतनी चाकचौबंद प्रबंध है, तो जाहिर सी बात है 16-17 को जब फैसला सुनाया जाएगा तो पुलिस इस क्योंकि आगे बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है, ऐसे में पुलिस को जाहिर सी बात है कि और ज्यादा पुख्ता प्रबंध करने पड़ेंगे क्योंकि अनुयायी दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा का फैसला सुनाया जाएगा, ऐसे में जो अनुयायी है उनकी पहुंचने की उम्मीदें 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है लोग आएंगे आसपास के इलाकों से और इनके जो समर्थक हैं वो बाहर के इलाके, उत्तर भारत में तो है, इसके अलावा साउथ इंडिया है, वहां से भी बहुत से लोग आते हैं इनके जो प्रवचन सुनने के लिए इनके नहीं आई। जैसे इनको दोषी करार दिया था उस वक्त करीबन सैकड़ों की भीड़ भी जो आसपास के इलाकों के अंदर छुपे हुए थे, जो लोग न जाने कहां से निकल के आए, हालांकि पुलिस ने चाक चौबंद प्रबंध किए थे, बावजूद इसके बहुत से अनुयायी जो जेल परिसर है वहां पहुंच गए थे। तो जाहिर सी बात है इसमें पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी दोषी करार देने के बाद में, क्योंकि इससे पहले जो इनकी किरकिरी हो चुकी है राम रहीम केस में। जी
शशिकांता, क्या बाबा रामपाल के समर्थकों से आपकी कोई बात हो पाई है? कोर्ट के फैसले पर उनका क्या कहना है?
जी दरअसल कुछ अनुयायियों से बातचीत की गई है, बकायदा जो AP सिंह है वकील है उनके, उनसे बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि आगे इसकी अपील डाली जाएगी और जो फैसला है वो जो दोषी करार दिए गए उस फैसले को भी वो मानने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है बाहर, और उन्हें इस केस में जिसमें हत्या का उनके ऊपर इल्जाम चल रहा है उनमें दोषी करार दे दिया। तो काफी आहत दिखे जो इनके अनुयायी हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी दिख रहे थे।
हिसार से जानकारी दे रही थी शशिकांता। अब खबर ओडिशा से, जहां तबाही मचा रहे चक्रवाती तूफान तितली ने 2 जाने ले ली हैं। निचले इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। भुवनेश्वर से सुब्रत पति की रिपोर्ट सुनिए।
उड़ीसा में गोपालपुर तट से आज सुबह 5 बजे खतरनाक तूफान तितली टकराया, जिसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी हुई है। चक्रवात के कारण गजपति जिला बुरी तरह प्रभावित है। गजपति जिले में बिजली लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कई जगहों पर टेलीफोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं। चक्रवात ओडिशा के अन्य जिलों की तरफ बढ़ रहा है और अगले 2 दिन भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। तूफान की वजह से गंजाम जिले में कई कच्चे घर तबाह हो गए हैं।
जोड़ा आज देखने को मिल रहा है तितलियों में, ऐसा वो एक बड़ी भयंकर रूप हमें देखने को जोड़ा।
हमने इस तरह का साइक्लोन कभी नहीं देखा। इसका भयंकर रूप देखकर हम डर गए। हम घर के अंदर ही थे तब पेड़ गिरने लगे और हमारे घर का छत ऊपर उड़ने लगा, तो हम डर के मारे घर से बाहर आ गए। ये था तूफान तितली में अपने घर खोने वाले गंजाम के दीपक साहू का शब्द। उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राहत कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 3 लाख लोगों को 1112 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी ने बीबीसी से कहा,
इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट वी हैव सीन मेजर।
सरकार उन लोगों को तारपोलिन प्रदान कर रही है जिन्होंने चक्रवात में अपना घर खो दिया है। अब भी सड़कों पर से पेड़ हटाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें इस काम में लगे हैं। अगर अगले 24 घंटे में अधिक बारिश होगी तो यह बाढ़ का कारण बन सकती है। समय समय पर स्थिति की समीक्षा की जा रही है। चक्रवात का असर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तूफान के दौरान 105 गर्भवती महिलाओं को गंजाम जिले में अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है। भारी वर्षा होने के कारण बंसधारा और ऋषिकुल्या जैसी नदियों में बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही है। सुब्रत कुमार पति, बीबीसी भुवनेश्वर।
गुजरात में दूसरे प्रदेश के कामगारों पर हमलों की घटनाओं के संबंध में आरोप लगने के बाद कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने आज गुजरात में सद्भावना उपवास रखा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात की छवि खराब की जा रही है। एक बच्ची से बलात्कार की घटना के बाद गुजरात में बाहरी कामगारों पर हमले की घटनाएं हुई हैं और बड़े स्तर पर उनका पलायन भी हुआ है। गुजरात से आने वाली अलग अलग ट्रेनों से बिहार के लोग वापस लौट रहे हैं। कल सुबह भी अजीमाबाद एक्सप्रेस से ऐसे कई लोग पटना पहुंचे। इनसे बात करके पटना से ये रिपोर्ट भेजी है मनीष सांडेले ने।
गुजरात से बिहारी कामगारों के वापसी का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद और पटना के बीच चलने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस से ऐसे कई लोग पटना जंक्शन पर उतरे। करीब एक हफ्ते से हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा के कारण ये अचानक घर लौटने को मजबूर हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले दिनेश कुमार गुजरात में एक ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं। वे भी अपने गांव के 7-8 लोगों के साथ कल लौटे।
हमारे जो भाई बंधु जो थे उन लोगों के वहाँ के वासियों ने मारना शुरू कर दिया, ठीक है, इसलिए हम लोग रात में वहाँ से रूम छोड़ के फिरते पड़ते जैसे भी हो अपने स्टेशन पहुँचे, वहाँ से हम गाड़ी पकड़ के चले।
सहरसा जिले के मोहम्मद इसराफिल अहमदाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर गयासपुर में मजदूरी करते हैं। वे अपने गाँव के 4 लोगों के साथ वापस लौटे हैं। कुछ महीने पहले ही वह घर पर ईद मनाकर गुजरात वापस गए थे। हालात सामान्य रहते तो वह 8-10 महीने बाद वापस लौटते, लेकिन अभी डर कर और बेरोजगार होकर इन्हें 3 महीने में ही वापस आना पड़ा है।
उन्होंने बोला कि यहाँ रात में मारपीट किया, जो रूम में था उसको मारपीट किया, जो कंपनी के अंदर था उसमें गार्ड को मना कर दिया तो गार्ड घुसने नहीं दिया। तो
बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने गुजरात की घटना को संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती बताया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं,
निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है और इसका राजनीतिकरण जिस ढंग से किया गया ये उससे भी बड़ा दुखद पक्ष है। तो हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री जी से बात किया और बिहारी मूल के डीजीपी वहाँ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका भी यह दिल के अंदर भाव पैदा हुआ कि इस सवाल पर गंभीरता से पहल होनी चाहिए।
इस बीच गुजरात से संबंध रखने वाले युवा नेता हार्दिक पटेल के कई पोस्टर पटना के चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। इन पर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा है और अपील की गई है कि अगर किसी के साथ मारपीट होती है या धमकी मिलती है तो वह तुरंत हार्दिक पटेल से उस नंबर पर संपर्क करें। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
आज गुरुवार है और आज हम आपको देते हैं आपकी चिट्ठियों के जवाब आपकी राय में।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और साथ में है सूर्यांशी पांडे।
नमस्कार। तो आज सबसे पहले राजेश जोशी जी खत से शुरू करें।
बिल्कुल,
खत यानी चिट्ठी यानी लिफाफे में आई हुई एक दास्तां।
दास्तां, और ये दास्तां बेहद खूबसूरती से लिखी गई है, लिखाई बहुत खूबसूरत है, और ये भेजी है भुवनेश्वर दास ने रोसड़ा बिहार से। और ये लिखते हैं कि इतिहास की खुलती पढ़ते कार्यक्रम के अंतर्गत यदि रेहान फजल जी हिंदी साहित्य में मुस्लिम रचनाकारों का योगदान भी बताएं तो मजा आ जाएगा।
क्या अद्भुत इन्होंने विचार ये दिया है, आपका जो आइडिया है बहुत ही सुंदर है, रेहान फजल तक पहुंचा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य में बहुत सारे मुस्लिम रचनाकार हैं और बहुत सारे उर्दू जो साहित्य है उसमें हिंदू रचनाकारों ने अपनी काफ़ी अपना योगदान दिया है, तो इस पर अगर कभी कोई कार्यक्रम बनेगा तो ज़रूर रेहान फजल तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी।
और ये अगला खत प्रोफेसर साहब ने लिखा है, ये कठुआ से लिखते हैं, जम्मू कश्मीर से, नाम है इनका योगदत्त, और ये लिखते हैं कि डियर राजेश जोशी, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर व्हाट यू हैव सेड अबाउट विष्णु खरे एंड दिस हैज इंस्पायर्ड मी टू रीड हिज कलेक्शंस ऑफ पोएम।
अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है इन्होंने, और विष्णु खरे जो हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि थे, उनकी जिस दिन मृत्यु हुई हमने एक और कवि मंगलेश डबराल से बात की और विष्णु खरे के व्यक्तित्व कृतित्व उनकी कविताओं पे, तो उसी के बारे में प्रोफेसर साहब लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप शायद या तो हिंदी लिपि में नहीं लिखते हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ही सही आपकी बात हम तक पहुंची और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने कार्यक्रम सुन के विष्णु खरे की कविताएं पढ़ना शुरू किया है।
अब ईमेल पर अगर हम
जी हाँ बिल्कुल, अब ईमेल को एकदम आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं।
तो यहाँ पर एक शिकायत आई है बलजीत कुमार से, जो लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी रेडियो का प्रसारण नहीं सुन पा रहे हैं, फेसबुक पर नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
हाँ, फेसबुक पर तो नहीं आ रहा है लेकिन सुनने के बहुत जरिए हैं। हमारी वेबसाइट पर अगर आप आएंगे bbchindi.com क्लिक कीजिए, उसमें आप ऊपर से नीचे तक जब स्क्रोल करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो ऊपर ही दाहिने हाथ पे आपको नमस्कार भारत और दिन भर के आइकन मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हैं तो और स्क्रोल नीचे कीजिएगा और आपको नीचे दिन भर नमस्कार भारत, जहां आप क्लिक करेंगे तो पिछले आज का कार्यक्रम भी और पिछले 3 दिन के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।
और ये अगर आप ईमेल ना पढ़ते राजेश जी तो शायद ये नाराज हो जाते हैं। किशन बोहरा जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं और ये कह रहे हैं, मैं बीबीसी का श्री राज नारायण बिसारिया, रत्नाकर भारती, श्रीमती रमा पांडे के जमाने से श्रोता हूँ।
ये बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं, इसका मतलब क्योंकि जिनका नाम लिया है वो बीबीसी हिंदी सर्विस के बहुत पुराने प्रसारक हुआ करते थे और उनके नाम दरअसल भारत के गाँव गाँव में, उत्तर भारत के तो कम से कम गाँव गाँव में लोग जानते थे।
हाँ बिल्कुल। और ये लिखते हैं, मैंने अपने दादाजी से सुना था कि बीबीसी असल मायने में विश्वसनीय समाचार देता है, अपने पिताजी से भी यही सुना था और अब मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशन जी, आप कभी कभी चिट्ठी लिखा करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करते हैं क्योंकि अब समय नहीं बचा है। चलते चलते पता नोट कीजिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमिरन प्रीत कौर, बताइए सुमिरन।
जी, कल मुकाबला होगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हैदराबाद में, ये टेस्ट मैच है। जहां तक इस श्रृंखला की बात है तो इस श्रृंखला में 2 ही मुकाबले हैं और जो पहला मुकाबला था जो राजकोट में हुआ उसे भारत ने अपने नाम किया था। अब जाहिर है कि वेस्ट इंडीज टीम इस मुकाबले के साथ वापसी करने की कोशिश करेगी,
बड़े अंतर से भारतीय टीम ने वो मैच जीता।
बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक आज जो मुकाबला हुआ दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो बहुत ही दिलचस्प रहा। ऑस्ट्रेलिया ने किसी तरह इस मुकाबले को ड्रॉ करा क्योंकि ऐसा लग रहा था एक वक्त पर कि ये मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन किसी तरह उन्होंने कोशिश की और अब ये मुकाबला ड्रॉ रहा है। और आपको बता दें कि आज उस टीम की घोषणा हुई है जो भिड़ेगी भारत की तरफ से वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो वनडे इंटरनेशनल मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला गुवाहाटी में होगा और उस टीम की घोषणा कर दी गई है।
बहुत शुक्रिया सुमिरन प्रीत कौर, खेल समाचार बता रही थी। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
जाने माने पत्रकार राघव बहल के दफ्तर और घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बहल न्यूज पोर्टल क्विंट के मालिक हैं और टीवी नेटवर्क 18 के संस्थापक हैं। रूस के सोयोज रॉकेट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आपात लैंडिंग की है। चालक दल के दोनों ही सदस्य सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि पाकिस्तान ने अपना वित्तीय संकट टालने के लिए कर्ज मांगा है। वैश्विक व्यापार में तनाव और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाओं के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट जारी है। ब्रितानी राजकुमार विलियम्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है कि यदि जानवरों से जुड़े अवैध व्यापार को नहीं रोका गया तो कई नस्लें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया कपिल देव सिंह ने। अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत और बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।